तो जैसा कि इस सेमिनार का थीम है, हम सभी आने वाले पार्टिसिपेंट्स का संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। और जैसा कि WHO ने डिफाइन कर रखा है कि स्वास्थ्य सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य नहीं होता है। फिजिकल स्वास्थ्य के लिए आप सभी ने सुबह में जुम्बा एक्सरसाइज भी किया होगा, लेकिन जैसा कि होलिस्टिक हेल्थ या कंप्लीट हेल्थ का डेफिनेशन है, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमें चाहिए मेंटल हेल्थ, उसके साथ चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ और भी सोशल हेल्थ भी चाहिए। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो आज इस सभा में हमारे बीच में रिनाउंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए दिव्य प्रभा दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल जी हैं, और सोशल जो समाज में क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे हम बेटर वर्ल्ड ला सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक दायरे का प्रश्न होता है, वो हमारे रूपेश भाई जी टेकअप करते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि रूपेश भाई जी एक एंकर भी हैं। कार्यक्रम पहले से ही थोड़ा सा विलंब है, लेकिन थोड़ा सा परिचय, क्योंकि डॉक्टर बी के दिव्य प्रभा दीदी जी को तो हमने सुन रखा है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में आप एक लिविंग सेंट हैं। आपका सबसे बड़ा विशेषता मैंने देखा है हर परिस्थितियों में शीतल मन और सर्व के लिए हमेशा सुलभ रहना। आप कभी भी उनसे समय लें, वो आपके पास सारे तमाम पोस्ट के अलावे आपके लिए हमेशा सुलभ रहती हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल जी, मैं भाई साहब को लगभग 33-34 सालों से जानता हूं, और एज अ पेशेंट भी आप कभी इनसे मिलेंगे तो आधी बीमारी आपके दूर हो जाएगी, क्योंकि इनका इतनी मृदुलता होती है इनके वाणी में, और इतना नम्रचित है ये कि पेशेंट को लगता ही नहीं कि डॉक्टर से मिल रहा हूं। तो उनके लिए भी एक बार हम लोग ताली बजा देंगे। हमारे बीच में बीके रूपेश भाई हैं, जो कि एक राजयोगा टीचर, स्पीकर, ट्रेनर, मेंटर, काउंसलर एंड राइटर भी हैं। 1994 से आप ज्ञान सरोवर में समर्पित हैं, और मात्र 16 वर्ष की आयु से आप आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा आपको मिली, जिसके पश्चात इन्होंने अपने आप को यहां समर्पित कर दिया, और विगत 20 वर्षों से आप आध्यात्मिक जीवन जीते हुए संस्थान के दो विंग्स हैं, जिसमें स्पार्क विंग है और यूथ विंग है, आप दोनों के कमिटी मेंबर हैं। और आपने देखा होगा आपके इस परिसर में गॉडलीवुड स्टूडियो है, वहां पर हमारा शूटिंग होता है, कई फिल्म बनती हैं, तो आप पीएम टीवी और अवेकनिंग टीवी दोनों में एंकर का आपका रोल होता है। आपने समाधान, एक मुलाकात, छूलो आसमान और रू रिहान ऐसे कार्यक्रमों का संचालन एंकरिंग किया है। आपको रिसर्च करना और राजयोगा का फिजिकल एप्लीकेशन पर कार्य करना यह बहुत अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूं कि रूपेश भाई जी आज इन दो महान प्रतिभाओं से आज वो ज्ञान, आज वो आपको वो खजाना लेके देने वाले हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिकली कैसे हमारे जीवन में इस रियाज योग से हम संपूर्ण स्वास्थ्य पाएंगे, इसका सूत्र आपको दिया जाएगा आज के सत्र में। थैंक यू, ओवर टू यू रूपेश भाई।
ओम शांति। सत्र बहुत ही सुंदर है, समाधान आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए सर्वप्रथम हम परमपिता परमात्मा का भी आज के सुंदर सत्र में आह्वान कर लें, क्योंकि उनकी सुंदर उपस्थिति हम सबके चित्त को शांत करने वाली और हमें प्रकाश की ओर ले चलने वाली होती है। चलिए एक मिनट प्यारे प्रभु का आह्वान करके सुंदर शुरुआत करेंगे।
कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
बहुत ही प्यारी गीत की पंक्तियां कि हम समस्याओं से परिस्थितियों से ये कह दें कि तुम बड़े नहीं हो लेकिन मेरा खुदा बड़ा है और वो मेरे साथ है, और इसकी अनुभूति आप सब यहां कर रहे होंगे राइट पिछले दो दिनों में। वो कहते हैं ना, यदि वो साथ है, उस साथ सर्वशक्तिवान साथ है, तो फिर तो जीवन में कोई समस्या रहती नहीं। और उसी का सुंदर सूत्र आप यहां से लेकर जाएंगे। एक युवक एक संत के पास पहुंचा, भ्राता जी भी आपको गुफा में लेकर गए थे, तो मुझे लगा कि उसी गुफा के बाहर से थोड़ी शुरुआत हो। एक युवक एक संत के पास पहुंचा और कहा कि महाराज, मेरे जीवन में कभी कोई समस्या ही ना आए, विपत्ति ही ना आए, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए। संत जी ने कहा कि चल मेरे पीछे पीछे। वो उसे गुफा में लेके नहीं गए, उसे कहीं और लेकर के जा रहे थे। वो उसे शमशान घाट में ले गए और कहा यहां लेट जा। बोले यहां क्यों लेट जाऊं, यहां तो मैं मरने के बाद आऊंगा। कहा यही वो जगह है जहां तेरे पास कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी। कहने का उनका भाव था कि यदि जीवन है तो जीवन में बातें तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों का निदान कैसे करना है, उन परिस्थितियों से कैसे पार पाना है, ये जीवन जीने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। कोई नाविक यदि अपना नाव लेकर के सागर में उतरता है और ये कहता है कि सागर में लहरें ही ना आए, तो क्या ऐसा संभव है? एक कुशल नाविक उन लहरों का आनंद लेता है, एक कुशल पायलट कैसी भी सिचुएशन हो जाए लेकिन वो सकुशल अपने प्लेन को लैंड कराता है। बस यही सुंदर कला हम अपने बड़ों से सीखने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आदरणीय दीदी से। दीदी, एक बात जो आती है हमेशा, हम ये सोचते हैं कि जीवन समस्याओं से विपदाओं से मुक्त हो, क्या ऐसा लगता है कि जीवन में जो विपदाएं आती हैं हमें तोड़ने के लिए आती हैं या हमें आगे बढ़ाने या जोड़ने के लिए आती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है?
ओम शांति। रूपेश भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक नाविक समुद्र में जाए और कहे लहरें ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। जहां मानव जीवन है वहां कोई प्रॉब्लम न हो, समस्या न हो, ये भी संभव नहीं है। वो आएगी, लेकिन उस समस्या को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है? जैसे भाई ने बताया कि एक नाविक है, उसका आनंद लेता है लहरें। बॉम्बे के अंदर समुद्र किनारे पर स्पेशली रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, पानी में जाके खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें जब आकर के छूटी हैं तो बच्चे और बड़े ये सब क्या होते हैं, खुश। उसमें छोटी छोटी आए ना तो मजा नहीं आता है, हाँ बड़ी लहर आई। और जब बड़ी लहर आती है तो उस पानी की लहर के साथ खुद भी कूदते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ऐसे ये संसार के अंदर भी समस्याओं की लहरें, छोटी बड़ी, ये तो आनी ही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ मेरे पास ही तो नहीं आ रही है, सबके पास आ रही है। रूप अलग अलग हो सकता है, उसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो लहरें हैं। लेकिन वो लहर कुछ आती है, कोई समस्या आती है, तो मेरी फेस करने की क्षमता शक्ति बढ़ती है। मैंने कभी 1 किलो भी वजन न उठाया तो फिर 1.25 किलो उठाना, और कुछ सामान उठाऊ नहीं तो 0.5 किलो भी उठाना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई 20-25 किलो भी उठा लेता है और मैं 0.5 किलो भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास। इसलिए थोड़ी 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 हम अपनी आने वाली समस्याओं को फेस करते जाते हैं तो फेस करने की क्षमता हमारी बढ़ती है, साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है कि इस बारी ये समस्या आई, मैंने इस प्रकार से उसको फेस किया, अब आए तो अनुभवी बन गए तो और मुझे इजी लगेगा, वो मुश्किल नहीं, और मैं औरों को गाइड भी कर सकूंगी कि देखो आपके जीवन में ऐसी ऐसी बात आए तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को क्या करना सॉल्व। इसीलिए अपने समाज में भी वडिलों के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, कहते हैं ना मैंने इतनी दिवाली देखी है, भाव ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो ये समस्या से मुक्त होने की बात न करें और भी एक्सपीरियंस वाले हम बने, अनुभवी बने। और इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि तूफान ये आपके लिए तोहफा, एक गिफ्ट है, गिफ्ट का काम, क्योंकि नॉलेज भी बढ़ती है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, तो उससे मुक्त नहीं होने का सोचे, आने दो। कई भक्तों ने भी भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मेरे पास अधिक से अधिक प्रॉब्लम, समस्याएं, दुख आए तो मैं अधिक से अधिक आपको क्या करूंगा, याद करूंगा, सब कुछ सुविधा सुख मिल जाएगा, तो भगवान क्या होगा, भूल जाएगा, उसकी याद नहीं रहेगी। इसलिए मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, वो प्रॉब्लम तो आने हैं लेकिन हम उसके बंधन का अनुभव ही नहीं करेंगे, मौज और मस्ती का अनुभव हम करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू, बहुत ही प्यारा। हाँ, करतल ध्वनि तो जरूर होनी चाहिए। आपको सुंदर कीज मिल रहे हैं आज कि कैसे जो समस्याएं और बातें आए उनके प्रति हम कैसे एक सुंदर सा नजरिया रखें और कैसे हम उन्हें तोहफे के रूप में परिवर्तित करें। आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, आप भी अपने प्रश्न तैयार रखिएगा, अंत में मैं आपकी ओर भी आऊंगा। भ्रतन जी, आपकी ओर आना चाहूंगा। एक बात जो आई कि हमारा नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। बचपन में हमें हर प्रकार के कोण तो सिखाए गए, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण, लेकिन ये दृष्टिकोण के बारे में किसी ने हमें नहीं सिखाया। तो हमारा नजरिया इन विपदाओं के प्रति, समस्याओं के प्रति कैसा हो ताकि हम बहुत आसानी से उससे पार कर सकें और इसे डेवलप भी कैसे करें, संक्षेप में मैं चाहूंगा इसे प्रकाश डालें।
रूपेश भाई को मालूम नहीं, आप सबको मालूम पड़ गया नजरिया, मालूम पड़ गया कि नहीं? क्या बोला तो सुनाई नहीं। मैंने क्या किया, तीन लोग ऊपर आए थे ना, क्या किया था तो बोलते क्यों नहीं, बोलो ना सर हमको मालूम है।
That's great.
Wait. एक कहानी बोलता हूँ आपको, ये नजरिए की बहुत अच्छी कहानी है। हमने भी ऐसा किया एक बार, फिर ऐसे तो कहानी लगती है। कहते हैं कि उड़ीसा में एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, तो उसको लगा कि भी बच्चों को गरीबी भी देखनी चाहिए ना, बच्चों को गरीबा का तो एहसास ही नहीं है, तो पैसा ही देखा है, तो सोचा कि भी गरीबी का एहसास कैसे हो। तो बिहार के छोटे से गांव में उनका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, उस गांव में बच्चों को भेज दिया। फिर जब 10-15 दिन के बाद वापस आए तब बच्चों को पूछा कि अभी समझ में आया, यहां देखो सब कुछ अच्छा है, एयर कंडीशन है, सब मिलता है, जो तुमको अब तक मालूम नहीं था, अभी ये 10-15 दिन कोई तकलीफ का एहसास किया? तो उसके सबसे छोटे बेटे ने बोला, डैडी मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि हम कितने गरीब है और अंकल कितने पैसे वाले हैं। क्या हुआ? तो कि डैडी मेरा बेडरूम तो 15 फीट बाय 20 फीट का ही है, उनका बेडरूम तो 100 फुट बाय 200 फुट का है, आंगन में खटिया डाल के सो जाते थे। कहा कि डैडी हमारा स्विमिंग पूल तो खाली 200 मीटर बड़ा है, उसका स्विमिंग पूल तो 5 किलोमीटर बड़ा है, नदी में स्नान करने जाते थे। डैडी हमारे घर में तो 2 ही कुत्ते हैं। समझे? हंसते भी नहीं है, नहीं समझे? हाँ, उनके घर में तो 50 कुत्ते, गली के सारे कुत्ते उनके होते थे, उनके साथ खेलते थे। तो हम कितने गरीब है और अंकल कितने, समझ गए? ये नजरिया।
बस तालियां तो जरूर, सचमुच नजरिया ही कमाल करता है।
अभी अभी ये तो कहानी मैं आपको सच बताता हूँ। हम लोग एक बार आसाम में एक प्रोग्राम के लिए गए थे और वहां ना बहुत पैसे वाले के घर में हमको रखा, मतलब ना बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में उनका मंदिर था, गार्डन था, सब कुछ। तो मैंने वो देखा, फिर सोचा कि भी जहां मैं रहता था पहले, आज से शायद 6-7 साल पहले, वो छोटा ही 1 बेडरूम का फ्लैट था, परंतु सामने बहुत बड़ा गार्डन था। तो मैंने कही बस वही हमारा भी है, वो भी 1 बेडरूम में रहते हैं, हमारा भी 1 बेडरूम है। ये गार्डन, उसको तो गार्डन मेंटेन करना पड़ता है, हमको मेंटेन नहीं करना है, तो अपना ही है। सामने है वो अपना ही है। तो एग्जैक्टली नो, इफ यू ट्राई, आपको एटीट्यूड मिलेगा हर बात में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बच्चों में। बच्चों का टेंशन है ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम कितने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो पूरा हो गया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास एक है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, वो हमारे क्लिनिक के लिए दोनों बच्चों को ही देखते और किसको नहीं देखते, बड़ों को नहीं। आप जाएंगे बोलेंगे नहीं मैं आपको नहीं देखता, क्योंकि बच्चों के इतने प्रॉब्लम्स है। परंतु ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत अच्छे, हम है ना उस पर जबरदस्ती करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट देम बी नेचुरल, जैसे ना उनको डेवलप होने दो, उनकी प्रशंसा करो। बच्चा ना मां मम्मी 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 को टाइम नहीं है, फिर और कुछ करेगा। बस बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाओ, इंजॉय करो, उनकी बातों को सुनो आप, और थोड़े टाइम में ना एक्चुअली आपको कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं ना कि कौन सी फील्ड है बच्चे लेंगे। एक्चुअली एज अ चिल्ड्रन इफ यू ऑब्जर्व देम, ना मेरी एक भतीजी है छोटी सी थी तब से, मैं तो बहुत नहीं जाता हूं मेरे भाई के पास, समझो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार गया। वो छोटी थी ना तब से मैं उसको वॉच करता था कि भी एक दिन गए तो क्या क्या, मुझे समझ में आ गया। मैंने उनकी मां को भी कहा कि शी इज गोइंग टू बिकम अ बेस्ट आर्किटेक्ट टूडे, शी इज रियली बेस्ट आर्किटेक्ट। एक बार बोलती अंकल मैंने 20 लाख का वॉशरूम बनाया। सचमुच बनाते तो लाइक वो बचपन से ही, उसको कुछ नहीं किया, बस हम लोग वॉच कर रहे थे छोटी सी थी तब से कि भी ये अच्छी आर्किटेक्ट बन सकती है, और विदाउट एनी एफर्ट, और अपना थोपो नहीं भी मैं डॉक्टर हूं सोचू मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, इम्पॉसिबल, हो भी सकता है, लेकिन उनमें जो कलाएं हैं है ना, जो नेचुरल गिफ्ट है, जो काम करने में उनको आनंद आता है, जैसे जो मेरा प्रोफेशन है ना, पैसे कम है, समझो एक सर्जन ऑपरेशन करेगा 1 घंटा तो 50,000 भी मांग सकता है। हम लोग थोड़े भी पैसे, लोगों को तो बहुत फीस है, तो बट हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोगों की लाइफ चेंज करते है ना। इफेक्ट है कि सर्जन्स, कई सर्जन्स मुझे कहते कि तुमको क्यों लोग इतना अच्छा अच्छा बोलते, हमको नहीं बोलते। मैं बोलता हूं तुम ज्यादा पैसे लेते।
यहां एक सुंदर इंटेंशन,
नहीं टेम्पररी ऑपरेशन किया, लेकिन बाद में वो फीलिंग नहीं होती है। वो हमारे प्रोफेशन में बाद में भी फीलिंग होती है, 10 साल के बाद मिले तो भी बुला रहे आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। सुन दिस इज अगेन एटीट्यूड, बिकॉज भी पैसा कितना चाहिए। अब देखो है ना, ये रिसर्च हुई है भी जो लोग मरने के नजदीक पहुंच गए थे, अभी मरने ही वाले 1-2 दिन में, उन सबका इंटरव्यू लिया गया ना। साइकोलॉजी में अलग अलग, हम हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको अलग अलग प्रोजेक्ट दे देते, आपको आश्चर्य हो ऐसा। एक प्रोजेक्ट में सबको पूछा गया, बहुतों को, कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या नहीं किया। भी किसी ने भी यह नहीं बोला कि मैंने कम पैसा कमाया, किसी ने भी यह नहीं बोला कि भी मैंने कम काम किया, किसी ने भी नहीं बोला कि मैं ज्यादा फेमस नहीं हुआ। हाँ उल्टा सबने ही बोला कि ये मैंने गलत किया, मैंने रिश्ता अच्छा नहीं बनाया है ना, मैंने एक जो सच्चा डेवलपमेंट करना चाहिए नहीं किया, मैंने बच्चों का ध्यान नहीं रखा है ना, या तो मैंने रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशन बनाना चाहिए वो नहीं बनाया, काश मैं बनाता तो बहुत अच्छा होता, अभी तो मैं मरने को हूं। तो रियली दैट इज वॉट वी नीड टू डू। अभी सोचो, अभी मैंने आपको कराया ना गुफा में जा रहे, ऐसा एक मेडिटेशन कि भी आपको पक्का बोल दिया गया है कि अराउंड 48 आवर्स में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? तो सचमुच है ना, तो अभी ये सोचो कि कल का ही दिन मेरा आखिरी दिन हो तो मैं क्या क्या करूंगा, आप देखना वो चेंज आ जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा।
चलिए हम जीवन के सत्य की ओर तो हमारा बढ़ना हो ही रहा है, कैसे अपने जीवन के पल पल का हम आनंद लें ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जाना सभी को है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए, एक आर्ट ऑफ लिविंग भी है, एक आर्ट ऑफ डाइंग भी है, राइट? लेकिन वो जीवन का अंत तब बहुत सुखद होता है जब जीवन को हमने जिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, और वही सुंदर जीवन जीने की जो कला है वो हम सीख रहे हैं अपने बड़ों से। दीदी, आपने जीवन जीने की जो कला है जो हम सबको सिखाते हैं, जो आपने इतने वर्षों में 1969 से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी है और मुझे लगता है लाखों लोगों को आपने ये कला सिखाई है, यदि मैं तीन चीजें आपसे जानना चाहूं कि जीवन जीने की कला ये है, हम ये करें, तो वो तीन बातें क्या होंगी?
जीवन जीने की कला इस विद्यालय में आकर के सीखी है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? खुशी मिले, इसी के लिए कर रहे हैं, और उस खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय के अंदर बाह्य खुशी ये हमें अल्पकाल की खुशी होती है। अभी मैं एक प्रोग्राम में गई थी तो वहां एक बहन बता रही थी कि मैं बहुत अशांत परेशान थी, तो मुझे हुआ कि इस हिल स्टेशन पर जाके आऊं, इतना दिन रह के आऊं, तो वो रह के आई तब वो समस्या तो वही का वही रूप था, थोड़े समय के लिए चेंज मिला, बाकी फिर वो प्रॉब्लम तो है ही। इसलिए इस जीवन में जीने की कला ये है कि हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा सुख क्यों गुम हो रहा है, क्यों हमारे से दूर हो रहा है, उस कारण को ढूंढें और उसका बेसिक निवारण हम करें। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है कि भाई जड़ से आपकी बीमारी को ठीक करे, एलोपैथिक टेम्पररी हमें तुरंत सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन वो गोली का एक घंटा आधा घंटा इफेक्ट हुई वो पूरा हो गया, फिर दूसरी गोली खाओ, गोली खाते रहो पेन है ही। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कहता है कि हमेशा के लिए आपकी ये बीमारी है वो ठीक होगी। तो इस विद्यालय के अंदर यही बात है कि हम अपने आंतरिक खुशी कैसे प्राप्त हो, बाहर से कुछ नहीं मिलना है, हमारे अंदर खुशी भी है, शांति है, प्रेम है, लेकिन भीतर जाना पड़ेगा ना, तो वो मिलेगी। हम बाहर जाते हैं और है अंदर में, तो वो मिलेगी कैसे? तो यहाँ ये कला सिखाई जाती है कि कैसे हम अपनी अंतर आत्मा को, अपने आप को यथार्थ रूप से हम जाने, पहचाने और समझे, तो उससे क्या होगी? खुशी बनी रहेगी। तीसरी बात मैंने देखी कि हम जीवन में कर्म तो करते ही है, लेकिन उस कर्म के अंदर वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ प्लेन कर्म करते हैं, लेकिन उसको गुणों को भी इन्वॉल्व करें, कर्म करें, तब उसमें शांति का एहसास भी है। जो कर्म मैं कर रही हूं वो बहुत दिल से, प्यार से, प्रेम से कर रही हूं। जो कर्म कर रही हूं मैं उस पर फोकस करूं, एक्यूरेट परफेक्ट कर रही हूं, तो वो कर्म करने में आनंद आता है, मजा आता है। यदि ये चीजें इन्वॉल्व नहीं है उसमें तो फिर बोझ सा फील होता है कि ये तो मजबूरी से, लाचारी से कर रहे हैं, क्योंकि उसे आनंद लेना नहीं आता है ना। तो ये है जीवन जीने की कला। ओम
शांति। बहुत ही सुंदर दीदी, ये कला हम जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं अगले 15-20 मिनट में, अगले 15 मिनट आपके लिए भी छोड़ूंगा। मैं एक रैपिड फायर की तरफ अपने दोनों ही हमारे दीदी और भाई साहब से चाहूंगा कि एक, दो या तीन लाइन में ही आंसर हमारी सिचुएशंस का दें। जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं, रूबरू हम होते हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे अपने व्यवसाय में हैं, चाहे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी समस्या व्यक्तिगत पारिवारिक। चले हम 3 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठे। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जो भाई बहने हैं उनके मन के जो प्रश्न हैं, उनके सामने जो विपदाएं या सिचुएशंस आती हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने जीवन के अनुभव से, ज्ञान से, सूत्र रूप में हमें दो या तीन बातें वो जरूर प्रदान करें। वैसे बहुत ऐसे होंगे जिन्हें रात को नींद नहीं आती होगी, कितने ऐसे हैं जिन्हें रात को सोने में थोड़ी दिक्कत होती है? देखें भाई सब काफी हैं, तो जिन्हें नींद नहीं आ रही है ये हमारे सामने एक समस्या है, कैसे सहज रूप से हमें नींद आ जाए? सूत्र
सूत्र आपको देता हूँ, इस सूत्र को याद रखना कि आपको नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। जब आप सोचते ना नींद आए तो नींद दूर भागेगी, बेटा ये सोचो कि मुझे आराम चाहिए। मैं तो एक प्रॉपर थोड़ी तैयारी कर रहा हूं, मुझे जैसे सूत्र का दो तीन घंटे पहले मोबाइल सब ये जो ब्लू लाइट बहुत हार्मफुल है उसको साइड में रख दो, फिर अगर पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो जो आपको अच्छा लगे ऐसा, देन इट इज गुड। फिर टोटल अंधेरा कर दो, कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं लेकिन है ना नींद क्यों आती पता है? मेलाटोनिन एक केमिकल है ब्रेन में जो रिलीज होता है, और जैसे अंधेरा होता है मेलाटोनिन रिलीज होता है। आज तो हम आर्टिफिशियल लाइट में जी रहे तो पॉसिबल तो टोटल डार्कनेस, तो आप देखना आपको अच्छी नींद आएगी। और एक सिंपल कर सको तो थोड़ा गर्म पानी हाथ पैर पर डालो सोने से पहले, क्योंकि गर्म पानी से ब्लड सर्कुलेशन है आएगा, ब्रेन को कम मिलेगा तो आप सो जाएंगे। एंड देन कोई भी एक राइट या लेफ्ट साइड की पोजीशन लो, फिर सोचो कि बस मुझे आराम मिल रहा है। और भी कई टेक्निक्स है बट इफ यू कैन डू दिस सिंपल थिंग्स ऑल्सो इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प।
जी थैंक यू। यदि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन मन भटकता है, मन हम चाहते हैं कि एकाग्र हो जाए, कैसे मेरा मन शांत और एकाग्र हो सकता है? कुछ सूत्र।
अभी नींद की भी बात चल रही थी ना, जब तक मन शांत नहीं होता है, अब देखिए जब ब्रेन हमारा एक्टिव होता है तब नींद नहीं आती है, मन जब रिलैक्स हो जाता है, और इसलिए इस विद्यालय में भी कहते हैं कि रात्रि के समय पर दिन भर जो आपने कार्य किए हैं और आपके मन में कोई बोझ है तो वो ईश्वर को सौंप दो, छोड़ दो। आज अभी मेरी मृत्यु हो तो ये सारा बोझ क्या करने वाली हूँ मैं, कुछ नहीं करूँ, क्योंकि नींद भी एक छोटा सा मृत्यु ही है, हमें अपना कुछ होश नहीं होता है। तो सब कुछ छोड़कर भगवान के हवाले करके मन को शांत करके सो जाओ। मैंने मेडिटेशन और एकाग्रता की भी बात कही, मन में बहुत सारे कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब लेके बैठेंगे तो उसके विषय में मन सोचता रहेगा तो एकाग्रता नहीं होगी। उसके लिए जो मैंने अपने आप में अपनाई हुई बात कि सबसे पहले अपने मन के जो विचार इसी मोमेंट में जो चल रहे हैं उनको साक्षी होके देखो, क्योंकि कभी भी हमारे मन को अपने से अलग होकर के देखा ही नहीं। और एक नियम है कि कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा हो और आप एक टिक देखो उसको, तो वो जो करता होगा ना उसमें स्लो डाउन हो जाएगा। हम अपने मन को भी जब इस तरह से देखेंगे तो मन के हमारे जो विचार है ना वो भी स्लो डाउन होंगे, और स्लो होने के बाद अभी मुझे क्या सोचना है उस विचार के तरफ मैं अपने आप को ले जाऊं। उसके लिए कार का भी उदाहरण देती हूं मैं, कार बहुत स्पीड से जा रही है और अचानक ड्राइवर कहता है लेफ्ट, तो ड्राइवर क्या कहेगा कि पहले बोलो ना, अचानक आप कहोगे कि लेफ्ट तो एक्सीडेंट होगा, पहले बताओ कि लाइट राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। ऐसे हमारे मन के विचारों को पहले रिलैक्स शांत कम। जैसे जैसे मन को आप देखेंगे वैसा मन के विचार कम होंगे, और कम होने के बाद फिर अभी मैं अपनी स्व इच्छा से, और उसके लिए भी खुद अपने मन के साथ बात करें। हम लोगों के साथ बहुत बात करते हैं, लोगों के मन की बातें भी बहुत करते हैं, इनका मन ऐसा, ये ऐसा वैसा, अपने मन से हमने कभी बात की है? इसलिए योग में बैठे तभी कि हे मन, दिन भर में आपकी इच्छा के अनुसार सोचा जा रहा है, अभी एक आधा घंटा आप मेरी भी सुनोगे रिक्वेस्ट, प्लस उसको कहें कि थोड़े समय के बाद कोई विचार आ भी रहे हैं, कहेंगे कि उस विषय पर भी चिंतन करेंगे, लेकिन थोड़ा समय ब्रेक स्टॉप, अभी मुझे इस विचारों और इस चिंतन में अपने आप को ले जाना है। तो अपने मन को भी समझाने से समझेगा। उसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि छोटे छोटे पोते पोतियां होते हैं ना घर में, आप बाहर जाते हो, दादा मम्मी नानी आप बाहर जा रहे हो, उसके पीछे लग जाते हैं, मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ, और आप नहीं लेके जाते हो, आपको जाना जरूरी है, उनको साथ ले भी नहीं जा सकते हो, तो वो रोते हैं। तो आप क्या करते हो, उसको कहते हैं कि बेटा मैं तेरे लिए ना चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए मैं खिलौना लेने जा रहा हूँ जो उसको पसंद है, अभी थोड़ी देर में वो लेके मैं आता हूँ। तो कहते हैं अच्छा बाय बाय, मेरे लिए लेने जा रहे हैं ना, तो छुट्टी देते हैं। अभी रोता हुआ छोड़ करके आप चले जाते हो, पकड़ो उसको, रखो, ये तो मेरे पीछे लगती है, आप चले गए, तो जिस कार्य के लिए भी आप गए हैं वहां भी मैं उसको रोता हुआ छोड़ के आई, वो अभी भी रो रही होगी, दुखी हुई होगी, तो वहां भी कार्य में भी वो मन में ये बातें आएगी। आप समाधान, भाई बैठे हैं ना, समाधान की बात, अपने मन को भी हम समाधान दें, उसको भी समझाएं, प्यार से उनसे भी बातें करें ना, तो मन भी समझेगा, मन भी हमारा क्या करेगा, हमें सपोर्ट करेगा कि अच्छा थोड़े समय के बाद आपको जो सोचना है जिस विषय पर जरूर सोचेंगे, लेकिन अभी सारे दिन में आधा घंटा तो मेरी बात मानी जाए ना, जीवन में भी कहते हैं हमेशा मैं आपका मानती हूँ, एक बार तो आप मेरी मानो, मन को भी कहें कि आप मेरा मानो, और फिर हमारे पास एक शुभ श्रेष्ठ अच्छे विचारों का स्टॉक होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो मन तो शांत हुआ, करेंगे क्या? कई बार कहते हैं ना भाई मौन रखो एक मिनट, मुख से तो चुप हो गए, मन वह सोचता है। तो शुभ विचारों का स्टॉक हमारे पास, अच्छे विचारों का, यहाँ आप सबको क्यों बुलाया है? कुछ ऐसे अच्छे विचार आपके पास जमा हो कि जब आप मेडिटेशन में बैठो ना तो उसका चिंतन करो, वो सोचो, क्योंकि जो सुनेंगे वो सोचेंगे, जो सुना ही नहीं है उस पर तो विचार भी क्या करेंगे ना? तो वो हमारे पास वो स्टॉक हो, उसका फिर हम चिंतन करना क्या करें, शुरू करें। तो मैंने देखा है कि मन बहुत जल्दी से एकाग्र हो पाएगा। ओम शांति।
यहाँ आकर के तो वैसे भी सबका मन, किस किस का मन घर को याद कर रहा है वो जरा हाथ उठाएं। घर की याद किस किस को यहाँ आने के बाद आई है? नहीं, आप सब घर को बिल्कुल भूल गए हैं, ये आपका घर है और यहाँ सब
यहाँ ही उनको घर जैसा लग रहा है,
यही आपका घर, आप अपने घर में आ गए, इसलिए अपने लिए जरूर ताली बजा लें। ये ईश्वर का घर हमारा असली घर है और यहाँ आकर सचमुच मन शांत हो जाता है। शुक्रिया दीदी, आपने मन के साथ बैठने की बात कही। गीता में भी कहा गया है मन को अपना मित्र बना लें। डॉक्टर साहब, यदि हम चाहते हैं मन के साथ बैठना भी, मन के साथ बातें करना भी, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो ज्यादा होता है, ऐसा क्यों है और इसका क्या निदान हो? मान लीजिए मन को मैं प्रभु में लगाना चाहता, उसमें तो नहीं लगता लेकिन जहां नहीं चाहता वहां लग जाता है।
कनेक्ट
हैंड माइक दे दीजिए भाई साहब।
नहीं जाता हैंड माइक का
प्रदेश। तब तक मैं दीदी से पुनः एक प्रश्न आपकी ओर से ले लेता हूं, और आपके प्रश्न भी आप चाहे तो लिख के दे सकते हैं और चाहे तो माइक सामने रखा जाएगा। दीदी, एक मन में हमेशा बात रहती है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जब से हम पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, तो मन में एक भाव, एक प्रश्न उठता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे?
प्रेजेंट समय पर सभी के जीवन का उद्देश्य बहुत धन कमाना, धन को जमा करना ना, ऐसे रहता है। या तो अपने कैरियर को बहुत जितना आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाएं उसी में, लेकिन ये उद्देश्य से हमारे जीवन में और हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी मन की स्थिति पर और हमारी तन की अवस्था। देखा गया है कि छोटी छोटी एज में व्यक्ति वृद्ध दिखने लगता है, क्योंकि इतना टेंशन, इतनी चिंता, इतनी समस्याओं को करने में वो थके, मेंटली फिजिकली थके हुए हैं। तो ये उद्देश्य से ये दोनों की एनर्जी खत्म होती है, और ये सब आगे भी जैसे मैंने कहा कि ये सब के पीछे का उद्देश्य क्या है हमारा जीवन में, कि भाई खुशी हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, ये चाहिए ना। मेरे पास एक बहुत बड़े बॉम्बे के ज्वेलर्स आए और उनको डिप्रेशन में चले गए थे, तो डॉक्टरों ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ। तो एक भाई लेके आए, आए बैठे, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की मैंने शादी बहुत बड़े दूसरे ज्वेलर्स के घर में की, वहां उसको भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने कितनी मंजिल से जंप मार के सुसाइड कर दिया। अभी सब कुछ था, लेकिन कहते उनको प्रेम की कमी, धन ये प्रेम नहीं दे सकता, स्नेह की कमी, सब कुछ हो। आज हम भी यहाँ है, आपके परिवार वाले कोई आपके साथ बात ही ना करे, कोई आपको कुछ पूछे ही नहीं, आपकी कोई केयर ही ना करे, अकेले अकेले, तो क्या होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दो मीठे बोल, आपका थोड़ा सा प्यार मुझे चाहिए। और प्रेम से आप महसूस भी करते हैं, प्रेम से छोटी सी चीज भी हुई हो लेकिन वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है, सुख देती है, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे ये चीज दी और मिठाई दी, लेकिन मुंह बिगाड़ के दी, वो मिठाई कैसी लगती है, कड़वी लगती है। प्यार चाहिए जीवन में, प्यार नहीं है तो व्यक्ति को होता है कि अभी मुझे जीवन ही नहीं जीना है, मेरा जीवन मैं समाप्त कर दूं। तो हमें प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और आगे भी कई भौतिक चीजों से उनसे नहीं मिलनी है, ये मेडिटेशन से, नॉलेज से, जीवन का उद्देश्य ये है, और वो मिले तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना, फिर कोई अपेक्षाएं नहीं रहेगी। मैंने देखा कि एक धनवान परिवार और एक थोड़ा साधारण परिवार था, लेकिन हस्बैंड वाइफ की आपस में इतनी एडजस्टमेंट और इतनी एक दूसरे की केयर, और वो छोटा घर था लेकिन हमेशा प्रफुल्लित आनंद और मस्ती में नजर आते थे। और वो कभी चेहरा कैसा, कभी चेहरा कैसा था, तो सब कुछ। और एक उदाहरण दूं, एक फिल्म डायरेक्टर को एक बहन लेके आई, कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती। अभी बात की थी ना रूपेश भाई ने, नींद नहीं आती है। तो लेके आने वाला भाई भी बैठा था, वो भी बैठे थे, थोड़ी आध्यात्मिक बातें की, मेडिटेशन की बात की। वो बातें मैं अभी सुना ही रही थी और वो तो वो भाई को मैंने कहा कि आप कहते हो नींद नहीं आती, आप देखिए वो तो मैं बोल रही हूँ, आवाज है तो भी सो गए। भाई ने कहा ना कि ब्लैक चाहिए, सारा डार्क, व्हाइट लाइट जल रही थी और मैं बोल रही थी तो आवाज भी था, तो भी उनको क्या हुआ, नींद आ गई। मन शांत, रिलैक्स हो, बाकी कुछ भी कर लो, एसी कर लो, ये कर लो, अंदर चिंता का कीड़ा लगा हुआ है, कुछ भी करो, नींद नहीं आएगी। मन का शांत होना। अभी वो ऐसे अच्छे आध्यात्मिक सोच को सुनते 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 उनका मन रिलैक्स हो गया, तो उनको क्या हुई, नींद। तो क्या चाहिए था, शांति ना। इतने कहते हैं कितने मास से उनको नींद नहीं आ रही है, नींद में भी नहीं, रात को नहीं, परेशान हो गए हैं, और यहां कुछ मिनटों में सो गए। तो क्या चाहिए अपने को, उद्देश्य क्या है। और ऐसे भी कहते क्या लेके जाएंगे, यहां सब जमा किया हुआ, वो तो यहां ही रहना है। हमने अपने अच्छे संस्कार, सद्गुण, हमने ज्ञान जो अपने जीवन में हमने अपनाया होगा, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लोग कर रहे हैं ना, कौन सी प्रॉपर्टी, ये नहीं, गुण, ज्ञान, शक्ति, ये आत्मा की क्या है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ये कोई हिस्सा नहीं मांगेगा, कोई छीनेगा नहीं, न गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी उस पर, है? कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी प्रॉपर्टी जो जितनी, भाई बहन, पति पत्नी, कोई हिस्सा उसका नहीं ले सकता, ऐसी प्रॉपर्टी जो है। तो उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए जमा करना, ये हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ओम शांति।
बहुत सुंदर, एक सुंदर उद्देश्य हमें हमारे जीवन का मिला है, हम स्वयं प्रकाशित हो जाएं शांति से, खुशी से, शक्ति से, आनंद से, इस अविनाशी संपदा से भरपूर हो जाए, जिसे कोई छीन भी नहीं सकता, और जिसे भी हम देंगे उसका जीवन भी आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसी सुंदर उद्देश्य को लेकर हम यहाँ से जाएंगे। माइक भी आपके सामने रखा हुआ है, मंच के सामने, जिन्हें भी मन में प्रश्न है आप आकर के पूछ सकते हैं। लेकिन भ्राता जी से चाहूंगा कि भ्राता जी, जो प्रश्न मैंने आपके सम्मुख रखा था कि हम जहां चाहें वहां कैसे स्थिर हों, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने मन को हम सुंदर साधें, उसकी कला।
देखिए, कई बार है ना, प्रश्न में उत्तर होता है। भाई जी ने कहा वो सत्य है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो चाहना ही बंद कर दो। रियली नाउ माई लाइफ इज लाइक दैट, बी लाइक अ रिवर, वो ले जाएगा आपको, है ना। नदी ये झगड़ा नहीं करती, हो पहाड़ी बीच में आएगा, हट यहां से, है ना, वो अपना रास्ता कर लेती है। फिर भी ये जो बात है, बात तो सही, और मैंने कहा वो भी सही है, वो बहुत डीप है, शायद आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आज साइकोलॉजिस्ट भी मानने लगे हैं कि जो रियल पावर है ना, इट इज अ गैप बिटवीन द थॉट्स। लेकिन हम गैप देते ही नहीं, एक साथ में चार विषयों पर सोच रहे हैं। इसलिए जो मैंने कहा सबसे सोचना ही बंद कर दो। इट विल टेक यू, आपका डेस्टिनेशन, गॉड हैज अ प्लान फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हम उसको सुनते ही नहीं। फिर भी ये प्रश्न भी सही है कि भी जो आप चाहते हैं, सपोज आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन लगता नहीं है और कोई भी बात, तो अगर मनोवैज्ञानिक रूप से बताना हो तो एक तो भाई ये नहीं कि यही चाहिए मुझे, एट द टाइम एक्सेप्ट कि अभी मेरा मन परमात्मा में नहीं लग रहा, इट्स ओके, है ना, बाद में भी लग सकता है। तो जस्ट उस समय तो बहुत उससे लड़ना नहीं है, जब आप विचारों से लड़ेंगे ना तो और प्रॉब्लम होगा, वो सारा है वो इंटरनल फाइट हो जाती है, फाइट नहीं करनी। दूसरा, अभी फिर भी कहेंगे हम चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि भी उसके एडवांटेजेस लिखो सचमुच। सपोज आप अभी यहां आए, आप सोचते हैं कि भी मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन वहां जाके होने वाला नहीं है, मैंने 16 आने बोले तो भी सब देने वाले नहीं है, तो क्या करना चाहिए कि उसके एडवांटेज लिखो कि भी मैं मेडिटेशन करता हूं, यह फायदा है इसका, और फिर अंदर में एक आएगा ना कि ये बेनिफिट है ना, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर मन फिर जाएगा। और दूसरी एक सिंपल सी बात कि ये ना, फिर जब आपने एक बार सोच लिया ना कोई भी बात है, फिर एक तो है कि उसकी प्रैक्टिस में लग जाओ, इन अ राइट वे, रॉन्ग वे में नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, प्रैक्टिस करने लगो, बोले 2 दिन 5 दिन, अल्टीमेटली उसका रास्ता मिल जाएगा। जब मैं भी ब्रह्मा कुमारी में आया तब करीब 18 साल का था, और तब ये भी सब कॉमेंट्रिज्म ने दी ना, उस समय नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी 2 मिनट में वो कॉमेंट्री खत्म हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, परमात्मा से जो भी है। तो मैंने खुद ढूंढा कि कहां से कॉमेंट्रीज मिले, तो कुछ किताबों से मिली, फिर जब वो अच्छी कॉमेंट्री मिलने लगी तो योग भी अच्छा लगा। ऐसे नहीं, प्रयोग भी करो हर बात का, आप प्रयोग करने लगेंगे, एक्सपेरिमेंट करना है, एफर्ट भी करनी है, तो देखना आपको एक राइट चीज मिल जाएगी। कुछ भी है, सपोज एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है, आप एक्सपेरिमेंट करो तो मिले। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं चाहता हूं सारे में, कि जीवन के बारे में ना क्लैरिटी डेवलप करो थोड़ा, भले टाइम कंज्यूमिंग है, परंतु व्हाट इज लाइफ, लाइफ में सचमुच क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन क्या, ऐसे थोड़ा सा इसमें एक ब्रेन स्ट्रोमिंग हो सकता है, परंतु कोई अगर सही रूप से ब्रेन स्ट्रोमिंग करे, मैं एक पूरा सेशन लेता हूं जो मेरे सेमिनार से, उसमें है ना, लोगों को पूछते कि आपको क्या चाहिए, भी आपको भी पूछे 10 मिनट, तो अंत में यही आएगा कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, करेक्ट। अभी वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक तो है फेमस बन के वहां पहुंचो, और दूसरा मैं कहता हूं कि फुलफिलमेंट को अचीव करके वहां पहुंचो। फेमस होके पहुंचने का रास्ता है ना बहुत पहाड़ियों का रास्ता, में खाई भी है, बहुत सारे बैरियर्स है, जंगल है, बहुत प्रॉब्लम है, और कितने पहुंचे मालूम नहीं हुआ, लेकिन जो फुलफिलमेंट का रास्ता है वो आंतरिक है और वो बड़ा सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा हमें वो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आप समझ के थोड़े अंतर्मुखी होके सही रूप से विथ विस्डम विथ क्लैरिटी वह फुलफिलमेंट का रास्ता अपनाएंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आज मुझे बहुत लोग कहते, ब्रह्मा कुमारी में भी कहते, मेरे प्रोफेशन में भी कहते, जब हम सभी डॉक्टर्स मिलते हैं ना, हमारे भी एसोसिएशन की मीटिंग शादी होती है, तो समझते तुम इतने डिटैच कैसे हो गए हो, नो वाई यू आर सो रिलैक्स, यू आर सो डिटैच। आई थिंक मैंने थोड़ा वो ब्रेन स्ट्रोमिंग करके वो क्लैरिटी ले ली है, तो रियली बस और हो रहा है, मुझे लगता है वो जैसे वो ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है वो करना है, मेडिकल कॉलेज का डीन बनना है, ये करना है, तो शायद नहीं होता है, उससे ज्यादा अभी ऑलमोस्ट हो गया है, और भी ऑटोमेटिकली होगा वो सब।
लगता है संतोष धन से बड़ा धन और कोई दूसरा धन नहीं है। सचमुच आत्म संतोष जब आ जाए जीवन में तो फिर तो सारे
भाई जी एक सेकंड है, लेकिन ये शब्द है ना थोड़ा डिस्टर्बिंग है। लोग आर्ग्यूमेंट कर दे कि संतोष से कैसे होगा, है ना, उसको समझ जाए ठीक से
जी।
लोग उल्टा ही कहते कि देखो भारत में आप लोग ये सब सिखाते हैं, हम लोग पीछे इसीलिए है। वेस्टर्न वर्ल्ड में संतोष नहीं है तो लोग, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ राइट पर्सपेक्टिव। जो संतोष, संतोष के साथ साथ भी वो क्लैरिटी लाओ कि आपको लाइफ में क्या है, या तो भी भगवान मेरे से क्या चाहते हैं। भगवान को नहीं मानते हो तो समथिंग सम कॉस्मिक एनर्जी पे, मैं ये दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूं और बस उसका एक एक क्या बोलेंगे आपका वो गोल समझ लो, फिर फुलफिलमेंट का रास्ता अपनाओ जो संतोष की बात की, तो फिर ऑटोमेटिक होगा।
जी जी बहुत ही सुंदर सी बात है और ब्रेन स्टोमिंग की बात जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं बहुत जरूरी है, और इसीलिए एक शब्द माइक आपके सामने है, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें अवसर नहीं दिया प्रश्न पूछने का। प्लीज जिन्हें भी पूछना है लेफ्ट साइड पे आ जाएं और मंच पे आएंगे। एक बहुत ही सुंदर वाक्य है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिन्हें भी पूछना है हमारे पास 10 मिनट हम वक्त लेंगे और एक लाइन में अपनी बात रखिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा वाक्य है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो जब हम भीतर जाते हैं तो सचमुच वो क्लैरिटी आती है, तरने वाली बात आती है। और एक बहुत प्यारी सी बात और इसी के साथ एड ऑन करना चाहूंगा, इस पे भी आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि हमें जो प्राप्त है हम उसका संपूर्ण आनंद लें, अप्राप्त के पीछे भाग कर अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करें। मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, तो इस संदर्भ में भी आप संतोष विषय पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। जी बहन हमारे सामने प्रश्न लेकर के आई हैं, आप जिनसे भी दीदी से प्रश्न पूछना चाहें या डॉक्टर साहब से, आप जरूर अपनी बात।
नमन है आप लोगों का। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ और स्पेशली भाई और दीदी से भी कि अभी जो यंगस्टर है शादी होती नहीं है और कुछ समय में हम तलाक का सुनते हैं, दोनों में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है, दोनों हाई लेवल पे जॉब में हैं, ईगो सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, मेडिटेशन बोलो तो वो कहते हैं हमारी उम्र नहीं है, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ तो बहुत जगह सुसाइड भी हो रहे हैं, तो उसका एक सॉल्व आप बताएं प्लीज। थैंक यू।
बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ। सुधा मूर्ति आपने सुना है, नारायण मूर्ति के वाइफ है, शी इज अ वेरी गुड ऑथर, है ना, बहुत आपको बहुत अच्छी कहानियां लिखती है वो। एक बार यही प्रश्न है, द सेम क्वेश्चन, उनको तो उनके लाइफ से ही पूछा गया कि भी आपकी शादी हुई तो आप कैसे एडजस्ट हुए, एंड शी गेव अ वंडरफुल, ये सारा है यूट्यूब में है, आप भी सुन सकते। शी गेव अ वंडरफुल रिप्लाई। उन्होंने कहा कि देखो, पहले तो बहुत अच्छा मतलब मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि भी नारायण मूर्ति एक महीने में 22 दिन फॉरेन में रहते थे और मैं 22 दिन गांव में रहती थी, शी वॉज डूइंग सोशल वर्क, तो कहते इसलिए हम लोग मिलते ही नहीं थे, तो झगड़ा नहीं हुआ। दिस वॉज ऑन लाइटर साइड। फिर उन्होंने रियल बात बताई, उन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि हमारे दोनों के बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है, वो डॉक्टर की बेटी है और नारायण मूर्ति एक टीचर के बेटे थे, तो कहते पूरा सब डिफरेंट था, बट देन आई थॉट कि हाउ टू एडजस्ट, है ना, तो भी मैंने थोड़ा अपने आप को मोल्ड किया, उनको नहीं बोला कि तुम चेंज करो, मैंने अपने आप को कहीं मोल्ड किया। और कहते कि भाई नारायण मूर्ति के पास टाइम ही नहीं था, उसको तो इन्फोसिस को लेना था, 24 घंटों में से 22 घंटा वो कंपनी के बारे में सोच रहे थे, हमारा तो भूल जाओ, कहते बच्चों को मैंने बड़ा किया, उनको मालूम ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देखो उनके बच्चे सक्सेसफुल है, उनकी बेटी की तो लंदन के क्या महारानी से भी ज्यादा संपत्ति है, मतलब वो उसने एडजस्ट किया, वो चीजों को समझे, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन तो फिर अच्छे से रहे ना आगे, टूडे दे आर एग्जाम्पल। तो बस यंगस्टर्स को भी नाउ नो दे आर मॉडर्न पीपल, ये कोई गांव के नहीं है, आज पूरा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें वो हुए ये बात को अगर थोड़ा सा जो प्रेजेंट स्टेट है, या मैं तो इसमें भी जवाब दूंगा कि शादी से पहले है ना दूसरी चीजें नहीं देखो, सी सर्टन अदर थिंग्स, क्योंकि लाइफ में वो एडजस्टमेंट होते हैं आगे चल के।
दीदी
फिजिकल अट्रैक्शन तो 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, देन यू नीड अदर एडजस्टमेंट। वो पहले ही सोचो कि जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसकी पर्सनालिटी, नेचर, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो सब आपको एडजस्ट हो रही है, देन यू विल बी सक्सेसफुल। बहन कुछ बताएंगे।
ओम शांति। बॉम्बे बोरीवली में महिलाओं का प्रोग्राम रखा था, बॉम्बे के जो होंगे वो पहचानते होंगे, तरला दलाल बहुत फेमस थी, वैरायटी भोजन में नहीं वन नंबर थी वो, उनका नाम, उनको बुलाया था तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि समझे पूछा कि कैसे आप इतनी वैरायटी चीजें हैं वो बनाना सीखे, कहाँ से सीखे, कैसे। कहते हैं कि कहाँ भी मैं सीखी नहीं हूँ, लेकिन मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड को है ना बहुत वैरायटी चीजें खाने की वैरायटी चीजें खाने का शौक था, ये एडजस्टमेंट, और उसी से मैं आज तरला दलाल बनी। इसलिए जो डाइवोर्स की बात है उसमें दो शब्द याद रखने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट। ये दो चीजें जहां है वहां डाइवोर्स बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि हम एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ही, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को, अपनी हस्बैंड वाइफ है ये, वो अपने स्वार्थ को, पत्नी अपने स्वार्थ में मस्त है, और वो एक दूसरे का पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहेंगे अभी अलग हो जाओ। और पढ़े लिखे हैं ये भी हैं कि इंडिपेंडेंट अभी नारियों ने कमाना शुरू कर दिया है तो उन पर डिपेंड्स भी नहीं है, पहले की नारियां आप देखो जीना मरना जो कुछ है, जो है जैसी है वैसे उसको एक्सेप्ट करके उनके साथ एडजस्ट होके चलती थी, आज तो समझती इन पर थोड़ी डिपेंड्स हूँ, मैं अपना कमाती हूँ अपनी रीति से रहूंगी, तो डाइवोर्स ही ये भी एक कारण है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं और न एडजस्टमेंट करनी है तो फिर क्या होगा। ये दो शब्द अपना ले तो डाइवोर्स के केसेस कम हो जाए।
जी ये सुंदर सूत्र आप सब भी दीजिएगा सभी को, ताकि हमारे यहाँ जो ये केसेस बढ़ रहे हैं वो कम से कम हो। और हमारी संस्कृति तो 7 जन्मों की है, राइट? हमारे यहाँ बंधन जब बनता है तो कहते हैं हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अभी तो 7 महीने कठिन हो रहे हैं, लगता है ये दोनों सूत्र यदि साथ हो तो 7 जन्मों का साथ रहेगा। जी बहन।
तो मेरे 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इज व्हाट रियल डिप्रेशन लुक लाइक, और सेकेंड ये कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम गिल्ट।
ये ना एक कॉमन शब्द हो गया हमारे पास भी, जब फोन आते हैं ना भी, साइकोलॉजी में बहुत सारी बीमारियां हैं कि ऑलमोस्ट 99% कहते हैं कि हमको डिप्रेशन है, अपॉइंटमेंट चाहिए। तो डिप्रेशन एक कॉमन शब्द हो गया, परंतु जो बहन ने पूछा वो रियलिटी में क्या है, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो तो आई हैव डिस्क्राइब 7 स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, उतना तो टाइम नहीं है, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कब आपको हेल्प लेनी चाहिए, कि अगर आप आपका जो लाइफ में इंटरेस्ट है खत्म हो जाता है, आप जो पहले चीजों को इंजॉय करते थे उन चीजों का आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना, जो पहली चीजें खुशी देती थी अभी वो चीजें आपको खुशी नहीं देती है ना, और अभी दोनों है, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डिप्रेशन, एक में आपकी भूख खत्म हो जाती है, दूसरे में बहुत ज्यादा भूख लगती है, एक में आपकी नींद उड़ जाती है, दूसरे में आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, पर स्पेसिफिक पैटर्न है जो प्रश्न है ना, ये समझेंगे तो होगा कि जो सचमुच डिप्रेशन को एक बार नींद आ जाती है लेकिन 3-4 घंटे में उड़ जाती है, फिर सो ही नहीं सकते. दिस इज अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिप्रेशन. और अभी आगे जब ये आगे बढ़ गए हैं ना, आपको लगे कि भी मर जाऊं तो अच्छा है ना, भी जीना नहीं है तो थोड़ा आगे बढ़े. फिर आपको ये लगे कि सुसाइड करूं तो और आगे बढ़ गए. और जब आप प्लानिंग करने लगो कि कैसे मरूं, जहर खा के मरूं, जंप लगा के करूं, पंदा लगा के करूं, तो इट इज मच मोर, इट इज एक्सट्रीम लेवल. ये स्टेज आपका या किसी का भी आप देखो, अगर व्यक्ति ऐसी बातें भी करने लगा तो सचमुच मेंटल हेल्थ की हेल्प लीजिए. ये नहीं सोचिए कि क्या मैं पागल हूं. आज पागलपन तो अगर बड़े सिटी में देखो तो 1-2% ही है. मैक्सिमम जो लोग हैं ना उनको ऐसे डिप्रेशन, ऑब्सेशन, ऐसी बहुत सारी और बीमारियां, एंजाइटी डिसऑर्डर, वो सब है. तो मेंटल हेल्थ की हेल्प लेनी चाहिए. सुशांत सिंह का भी जैसे हुआ ना, वैसे बहुत सारे केसेस, वो देयर वाज समथिंग. उनकी तो हिस्ट्री है कि वो शायद साइकेट्रिस्ट को भी मिले थे, परंतु अंदर में कुछ होता है और एक इम्पल्स की बात है, व्यक्ति सुसाइड कर सकता है ना. तो इसलिए इस सिम्टम्स को समझना है और प्रॉपर हेल्प लेनी. थैंक यू.
सबको नमस्कार है सर. थोड़ा हमको गाइड कर दीजिए, मतलब हमको तो कहे हाउ टू हैंडल द टाइम बिटवीन फेल्यूर ऑफ प्रिवेंटिव प्लानिंग एंड ट्रबल शीटिंग. मतलब हमको बच्चे लोगों को स्टडी का प्लान करते हैं, नहीं तो हमको कोवर्कर्स का वर्क प्लान करते हैं, जो 6 बजे ये सब होना है, नहीं तो ये आज तो ये होना है, कल तो ये प्लान करेंगे. कभी कभी क्या है वो नहीं हो रहा है. नहीं होने का रीजन वो लोगों का स्पेसिफिक रीजन हो रहा है, मगर हमको क्या है वो टाइम को मतलब गुस्सा आ रहा है, उसको मतलब वार्निंग दे रहा है. उसके बाद में हम जाके थोड़ी बहुत टाइम होने के बाद आप जैसा मतलब सेशन से सुनने के बाद ठीक है जाने दो, कल हम इसको कैसे बनाएंगे और कैसे प्लान करेंगे बोल के फिर से इसको ठीक कर रहा है. मगर इन बिटवीन दो टाइम है ना, वो टाइम को हमको मोमेंट्री मैडनेस आ रहा है. वो मोमेंट्री मैडनेस को और कई तरीके से हैंडल करने के लिए थोड़ा हमको हेल्प कर दो सर.
वास्तव में हर एक प्रश्न के बहुत लंबे उत्तर हो सकते हैं, बल्कि शॉर्ट में देना है. मैं आपके केस स्टडी के द्वारा इसका सचमुच उत्तर देना चाहता हूं. ये रियल एग्जाम्पल है. बेंगलोर में एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वहां पे मेरा सेशन था. तो जब पूरा हुआ ना तो जो उसके चीफ हुआ सपोज टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट वहां पर नियुक्त करती थी, तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे. तो उन्होंने मुझे अपना शेयर किया. उन्होंने कहा कि जब मेरी यहां पर अपॉइंटमेंट हुई तो इट वॉज अ लॉस मेकिंग होल वेंचर, नो ह्यूज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जो बहुत बड़ा लॉस कर रही थी. अब ये तुरंत तो चेंज हो नहीं सकता है कि वेन अपॉइंट. उन्होंने अपना वॉच किया और पूरा, उनको तो अंदर मालूम नहीं, ऑल्दो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, लेकिन पूरा इंटरनल तो उसको मालूम नहीं है. तो उन्होंने थोड़ा अपने आप स्टडी किया और फिर एक चीज पर उन्होंने कहा, बोलते मैंने एक सिंपल सा काम किया. मैं जो एचओडी थे ना उनको वीक में एक बार साथ में बुलाता था और हम लोग कहते थे कि हम चलो साथ में बैठ के चाय पीते. कहते फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग लोग बस चाय पी के उठ गए, किसने कुछ नहीं बोला. ऐसे 2-3 बार हुए ना, फिर किसी ने कुछ सजेशन दिया नहीं, जो खुद भी बोला अपने सारे, फिर लोग फटाफट से, तब तक वो ओपन अप हो गए थे. और कहते लोगों ने सजेशंस दिए ना, हमने मैक्सिमम एक्सेप्ट कर लिए. और कहते बड़ा चेंज ये आया कि भी उनके ही सजेशन थे, मैंने नहीं दिए थे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, उनके सजेशंस थे. और क्योंकि उनके सजेशंस थे तो उन्होंने सारे अपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट किए और भी चीजें होगी. और बोला कि देखो आज ये प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है. और एक लार्सन एंड टुब्रो का उनका एक थर्ड डिवीजन स्विच गियर डिपार्टमेंट है, उसमें कई मेरे सेशंस हुए. फिर एक शायद फरीदाबाद में ऐसा उनका एक प्लांट है, वहां एक बार बुलाया. तो तब भी ना वो जो वहां के यूनियन लीडर्स थे ना, उन्होंने बताया. कि देखो ये हमारे जो नए चीफ आए हैं वो कुछ भी हमको उन्होंने टैक्टफुली पूरा किया, वहां तो ना हड़ताल हो गई थी, देवर ऑन स्ट्राइक, तो सब खत्म। कहते ये आए यहां पर तो इन्होंने बस चुपचाप कुछ कुछ काम किए। कहते कि एक बार एक वर्कर है वो कोई माल की डिलीवरी कर रहा था, रिक्शा में जा रहा था, वो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया, तो भी कंपनी की ऐसे तो जिम्मेवारी इतनी थी कि उसको कोई भी एक हॉस्पिटल में भेज करके ट्रीटमेंट कराओ, परंतु उसने कहा इसे अपोलो हॉस्पिटल में ले जाओ। अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाके अच्छी ट्रीटमेंट हुई, भले उसके ऊपर 20,000 का खर्चा हुआ, लेकिन कहते सब पर ये पावरफुल इफेक्ट हुई है कि ये हमारे चीफ ही इज कैरिंग फॉर अस, और कहते दिल से लोग काम करने लगे। ऐसे उन्होंने छोटे छोटे चीजें की। जब मैं भी गया ना तो पहला सेशन तो मैनेजर्स का था, देन दे कॉल्ड मी सेकेंड टाइम और बोलते कि अभी मैनेजर्स नहीं, अभी हमने हमारी वाइफ्स को भी बुलाएंगे, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग वो तो सबके लिए है, व्हाट यू आर टॉकिंग इज नॉट समथिंग नॉट टेक्निकल थिंग। तो उन्होंने सचमुच बुलाया और उसकी भी आगे चल करके इफेक्ट हुई। और अनदर सिंपल थिंग ही डिड, मुझे बोला कि यूनियन लीडर से आप बैठो, जब यूनियन पता है मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, छोटा सा है बट जिसको बोला एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे। जैसे वो लोग बैठे हैं ना मुझे घड़ी दिखाने लगे कि देखो हमारे बॉस बहुत अच्छे, इन्होंने हमको घड़ी दी। सो अ स्मॉल गेस्चर विच इज आउट ऑफ टर्न, जो समथिंग डिफरेंट है, दैट कैन हैव अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। ऐसा कुछ करो ना तो दिल से। अभी यहां पर भी आप देखो, यहां कोई सुपरवाइजर है, कहीं दिखा आपको सुपरवाइजर कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ये कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हरेक व्यक्ति ये समझता है कि मेरा अपना है। जैसे मेरा आपको बताऊं, कल मैंने दोपहर में ट्रेन पकड़ी है, रात को 2 बजे मैं यहां आया हूं, अभी ये लेक्चर लिया, अभी 5 बजे ट्रेन पकड़ूंगा, कल सवेरे पहुंचूंगा वहां फिर से पेशेंटों की लाइन। तो क्यों किया? कि भी ये हमारा सेंटर है, आपको बोला ना, कुछ और बोलेगा तो नहीं करेंगे, कि भी हमारा सेंटर है।
डॉक्टर साहब के लिए एक बार तालियां उनकी ऊर्जा के लिए और साथ ही हम सबको इतना सुंदर लाभ पहुंचाने के लिए। जी एक अंतिम प्रश्न ले रहे हैं भैया,
सिंपल थिंग्स को सीख रहे हो।
ओम शांति।
दिव्या दीदी के लिए, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आके ईश्वरीय ज्ञान मिला, आनंद खुशी मिला, जीवन पहले से बहुत न्यारा लगता है, बट ये अनुभव लाइफ टाइम परमानेंट कैसे रहे, इसका थोड़ा मार्गदर्शन दे।
सही प्रश्न के लिए तालियां, कि हमारा ये सुंदर अनुभव कैसे लाइफ टाइम रहे दीदी के जीवन के अनुभव से।
इसीलिए एक शॉर्ट में ही इसका जवाब दूंगी कि जो ज्ञान यहाँ सुना, जो एटमोस्फियर आपको मिला है और अच्छा लग रहा है, वो इंडिया में हर जगह पर अपने ऐसे सेवा के स्थान है, वहाँ रेगुलर जाइए तो ये जीवन पर्यंत ये खुशी आनंद शांति ये बनी रहेगी, क्योंकि वो वातावरण वो ज्ञान रोज मिलेगा तो आत्मा को वो खुशी का खुराक मिलता
रहे।
ओम शांति। भाई जी के लिए सवाल है, क्या आनुवांशिक कमजोरियों को दूर किया जा सकता है? जैसे मेरे पिताजी बहुत क्रोधी थे, तो मैं भी हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, तो खुद पे ये क्या किया जा सकता है, कैसे ये ठीक हो सकता है? और एक दूसरा सवाल कि मैं हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं ये चाहूं कि जो भी आसपास मेरे सदस्य हैं वो 100% 100% मेरी बात माने, तो ये संभव नहीं है, तो उसके लिए खुद पे क्या काम करना? बस ये दो सवाल, धन्यवाद।
दोनों प्रैक्टिकल है। जो फर्स्ट है ना, आपको साइंस बताता हूँ, पूरी एक नई फील्ड डेवलप हो रही है जिसमें नोबेल प्राइज भी मिले, जिसको बोला गया एपिजेनेटिक्स, मतलब कि जीन्स के ऊपर। तो ये अभी साइंस में एक्सेप्टेड बात है कि भले जीन्स के कारण हो सकता है, लेकिन जीन्स को दोष नहीं दो, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भी मेरे में जीन है, लेकिन जीन का जो एक्सप्रेशन है ना वो मेरे कंट्रोल में। जैसे कहा कि भी मेरी माँ भी क्रोधी थी, पॉसिबल कि आप में वो क्रोध का जीन है, परंतु उसको एक्सप्रेस करना वो डिफरेंट चीज है। कि ये जो जीन है ना वो आपको एक क्या बोलेंगे कि स्ट्रांग व्यक्ति बनाता है। यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट वे फॉर सक्सेस रादर देन एंगर और मैनिफेस्टेशन भी। जैसे भी मेरे फादर को डायबिटीज था, अभी मैंने ध्यान रखा है उनको तो 50 में हो गया था, आई एम 65, देयर इज नो डायबिटीज। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है फादर को था, शायद जीन्स है ना, अभी खाना का ये कारण है। तो कोशिश कर रहे हैं, भले कभी उल्टा पुल्टा भी होता है, बट इफ यू रियली ट्राई तो फिर वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ये पूरी फील्ड है एपिजेनेटिक्स।
बहुत सुंदर, मतलब हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत।
दूसरा सेकेंड, व्हाट वाज सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड था उनका कुछ, क्या था? नहीं, खाली बोलो शॉर्ट में।
टाइम थे कुछ?
हाँ, वो ना दिव्या बेन भी बहुत अच्छा बोलती है कि भी मैं चाहूं ऐसा लोग क्यों ना करे, क्योंकि हम सब डिफरेंट है ना, हम सब थोड़ी एक जैसे दिखते। चार बच्चे तो चार बच्चे डिफरेंट है, तो एवरीबडी इज डिफरेंट, उसको इंजॉय करो। दूसरा ये इसको क्या बोला है दुनिया को, नाटक है ना, कोई ऐसी सीरियल हो जो जिसमें सब लोग एक दूसरे के जैसा ही करे, खाए पिए मजा करे सो जाए, तो आप देखेंगे। हाँ, कौन सी सीरियल देखते हो? हाँ, जिसमें मजा होता है, सस्पेंस होता है, कुछ होता है। तो लाइफ भी ऐसी है, तो लोग डिफरेंट होंगे ना, वो तो उल्टा आप उसको इंजॉय। नाउ प्रैक्टिकल पार्ट इनकी आए ना, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन या घर है तो उनकी वो स्पेशलिटी को आपको है ना यूज करना है। कोई भी आपके अंदर में चार लोग ही है, तो चारों की कुछ कुछ स्पेशलिटीज है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें लगा दो उस व्यक्ति को, तो वो करता रहेगा और वो भी इंजॉय करेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल,
बहुत ही सुंदर। हमारे बीच संजय भाई आ गए हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। शाम को भी सुंदर सत्र हैं, जिनमें भी आप अपने प्रश्नों को हमारी कल शाम को है, तो आप अपने सुंदर प्रश्न जो भी हैं उन सभी के आप यहाँ आए हैं। आपके मन में चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हैं, पारिवारिक हैं, व्यावसायिक हैं, यहाँ से आपको संपूर्ण समाधान मिलेगा ही, और यहाँ से सुंदर प्रकाश लेकर के आप जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मन के जो भी द्वंद्व हैं जब तक वो समाप्त नहीं होते तब तक जीवन में आनंद नहीं आता, खुशी नहीं आती। और आध्यात्म ही वो सुंदर स्रोत है, वो माध्यम है जहां से हमें ये सुंदर प्रकाश मिलता है। अंततः एक ही बात कहूंगा, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही थी, अब हमारे जो आने वाले पर्व हैं, एक है हमारा हमारी दीपावली और साथ ही दशहरा। तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम जी एक एक करके गला काटे जा रहे थे रावण के, लेकिन वो गला फिर जुड़ जाया करता था। हम भी एक एक समस्या को काटते रहते हैं, छांटते रहते हैं, लेकिन फिर समस्याएं उपजती रहती हैं, परेशानियां आती ही रहती हैं। जब ये कहा गया कि नहीं, रावण की नाभि में तीर मारिए, नाभि में तीर मारा गया, उसके बाद रावण का अंत हुआ। लगता है ऐसे ही हमें उस स्थान को आइडेंटिफाई करना है जहां पर यदि हम फोकस करें, जहां पे हम सही तीर चलाएं, तो हमारे जीवन के सभी समस्याओं का निदान हो, और आए भी तो भी हम सहजता से आगे बढ़ते चलें, जैसे प्रारंभ में हमारी बात हो रही थी। और आध्यात्म ही वो सुंदर प्रकाश है जो हमें बताता है कि कहां हमें वार करना है और कहां से हमारी समस्या का सुंदर निदान होगा। तो दीदी का और साथ ही हमारे डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार तालियों से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें सुंदर प्रकाश दिया है। इस प्रकाश को, इस सुंदर सूत्र को हम जरूर अपने जीवन में लाएंगे और अपने जीवन को प्रकाश की ओर, समाधान की ओर ले चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश भाई जी, आपने हमारी दीदी और भाई साहब के लिए ताली बजाई, लेकिन आपके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए।
आपने रुपेश भाई को देखा होगा चैनल पर सूरज भाई के साथ, एक समाधान लेके आप बीच में आते हैं। देखिए वैसे तो समय पूरा हो गया और आइडियली वोट ऑफ थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम के रूप रेखा देखते हुए रुपेश भाई मैं चाहूंगा कि एक कॉमन चीज है जो कि रह गई है और वो उन लोगों की तरफ से आया है जो चालन करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, लोको पायलट्स, उनका मैं चाहता हूं कि आप बताएं उनको। उनका कहना है कि ये फॉर्मेट में हमने योगा कर लिया, यहां सीख लिया, मेडिटेशन सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम लंबे लंबे समय तक गाड़ियां चलाते हैं और हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि हम सेंटर पर जाकर के मेडिटेशन करें। तो ऐसे जो इमरजेंसी सेवा में जो भाई हमारे काम करते हैं, आजकल तो बहनें भी लोको पायलट्स हो गई हैं और ट्रेन्स भी चलाते हैं, तो क्या उनके लिए सहज उपाय क्या है कि वो ऑन ड्यूटी रहते हुए आप इस मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हुए और इसका लाभ कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आप क्वेश्चंस बहुत लोगों का फोन पर भी लेते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब दें।
दो ही चीजें मैं कहूंगा, एक तो यहां जैसे आप सुबह उठ करके योग कर रहे हैं तो कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। यदि सुबह सुबह आपने अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भर लिया, परमात्मा के सुंदर दर्शन कर लिए, उठते कहते हैं ना उठते ही यदि किसी अच्छे व्यक्ति के दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और यदि उठते ही हमने ईश्वर का ध्यान कर लिया, उन्हें देख लिया, उनसे दिल की बातें कर ली, उनसे अपने आप को भरपूर कर लिया, तो सारे दिन आपको एनर्जाइज रहना बहुत इजी लगेगा, आपके तार जुड़े ही रहेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे साधन बन गए हैं, चाहे वो कमेंट्रीज हैं, सुंदर ईश्वरीय याद के गीत हैं, उन्हें आप या तो जहां पे भी आप हैं वहां पे उसे यूज कर लीजिए, चाहे आजकल सभी के पास मोबाइल हैं उन मोबाइल में आप फेड कर लीजिए, बीच बीच में आप उन्हें यूज करते रहें, वो चलते रहें, तो भी आपका ध्यान मस्त ईश्वर में जुड़ा हुआ रहेगा। और तीसरी एक चीज ये भी, हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे बीच बीच में एक सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, आप अपने लिए भी यदि ऐसा नियम बना लें कि घंटे में, दो घंटे में एक बार मैं पर्पजली एक मिनट का वक्त निकालूंगा, तो भी आपको कनेक्टेड रहना ईश्वर से बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सुंदर टिप्स को अपनाएं तो आप सहज रूप से अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड फील करें।
बहुत सुंदर समाधान आपने बताया कि सुबह आंख खुलते ही ईश्वर के हाथों में अपना हाथ दे दें, उनको अपना साथी बना लें और इतना जोर से उनका हाथ पकड़ लें कि सारा दिन ईश्वर के सान्निध्य में आपका बीते, तो हर परिस्थिति में आप योगयुक्त योगी रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश भाई जी का। अब वक्त हो चला है, आप सभी का भोजन आपका इंतजार कर रहा है। पुनः मैं सभी आज के इस क्वेश्चन टॉक शो में आए हुए बीके दिव्या प्रभा दीदी जी और डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बीके रूपेश भाई साहब